नमस्कार, आज हम डॉक्टर प्रणव पांड्या जी की लिखी पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा इसके एक बहुत ही खास अध्याय पर बात कर रहे हैं
जी।
ये पुस्तक वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर आधारित है और ब्रह्म वर्चस्व ने इसे संपादित किया है।
हाँ।
और जैसा बताया गया है इसमें जो भी लिखा है वो बिल्कुल आंखों देखी सच्ची घटनाओं का
हाँ।
भावपूर्ण वर्णन है।
बिल्कुल। और आज का अध्याय है महामिलन हेतु महाप्रयाण की वेला।
जी,
ये अध्याय वंदनीय माताजी के जीवन के मतलब बिल्कुल अंतिम दिनों का, उनकी भावनाओं का और उनके महाप्रयाण यानी स्थूल शरीर छोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसका बहुत मार्मिक वर्णन करता है।
हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस महत्वपूर्ण और भावपूर्ण प्रसंग को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इन आखिरी पलों में क्या खास संदेश छिपे थे।
जी देखिए, पुस्तक बताती है कि वंदनीय माताजी के मन में एक तरफ तो अपनी अनगिनत संतानें मतलब उनके जो अनुयायी थे उनके लिए बहुत गहरी चिंता थी, बहुत वात्सल्य था।
हाँ।
और दूसरी तरफ परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म जगत से जो संकेत मिल रहे थे और विश्व कल्याण की जो एक बड़ी योजना थी उसके तहत उनका देह त्यागना भी मतलब जरूरी होता जा रहा था।
हाँ, ये एक तरह का द्वंद्व रहा होगा उनके मन में।
बिल्कुल, गुरुदेव के जाने के बाद उनके मन में बहुत विकलता तो थी ही, लेकिन वो मां का हृदय वो हमेशा हावी रहा।
हाँ, पुस्तक में ये बात साफ लिखी है कि 1991 में जब गुरुदेव का श्रद्धांजलि समारोह हुआ तभी उन्होंने जाने का मन बना लिया था।
जी, उन्होंने कहा भी सोचा था श्रद्धांजलि देकर वहीं चली जाऊंगी,
लेकिन वो रुकी है ना।
हाँ रुकी। और इसका कारण पुस्तक के अनुसार डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और जो दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उन्होंने उनसे रुकने का बहुत आग्रह किया।
वो शायद उनकी पीड़ा समझ रहे थे, उनके बिना असहाय महसूस कर रहे होंगे।
बिल्कुल, तो उनकी इसी भावना का आदर करते हुए वो लगभग 3.25 साल और रुकी।
और ये जानना भी जरूरी है कि उनकी चिंता मिशन के ढांचे या भविष्य को लेकर उतनी नहीं थी, है ना?
नहीं नहीं, उनका तो साफ मानना था कि मिशन तो ईश्वर चला रहे हैं, गुरुदेव की तप ऊर्जा है वो उसे सुरक्षित रखेगी।
अच्छा, तो फिर मुख्य चिंता क्या थी?
मुख्य चिंता थी परिवार में मतलब गायत्री परिवार में आपसी प्रेम और एकता बनाए रखने की। वो चाहती थी कि ये जो इतना बड़ा परिवार है ये एक साथ बंधा रहे।
इसीलिए जाने से पहले उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को खासतौर पे बुलाया और समझाया भी।
जी
हाँ, और उनका वो संदेश कितना मार्मिक और कितना प्रैक्टिकल है। उन्होंने कहा कि देखो, छोटों से गलतियां तो होंगी, उन्हें डांटना भी, पर हमेशा गले लगा कर रखना।
बिल्कुल, प्यार की कमी महसूस ना होने देना।
कोई ये ना सोचे कि भाई अपना घर बार छोड़ के यहाँ आए हैं तो अब उनका कोई नहीं है।
जी,
ये दिखाता है कि उनके लिए रिश्ते कितने गहरे थे।
सही कहा। और फिर उनका वो गंगा चांद और मछलियों वाला दृष्टांत वो तो अद्भुत है।
हाँ बताइए उसके बारे में।
उन्होंने कहा, देखो मैंने मनुष्य देह जरूर पहनी है पर तुम लोग मुझे सिर्फ मनुष्य मत समझना। उन्होंने समझाया कि जैसे मछलियां पानी में चांद की परछाई से खेलती हैं, लेकिन जब चांद डूब जाता है या बादल आ जाते हैं तो वो एकदम व्याकुल हो जाती हैं।
हाँ।
उन्हें ये समझ नहीं आता कि चांद तो असल में आकाश में अभी मौजूद है।
तो ये एक तरह से उनके अपने दिव्य स्वरूप की ओर एक बहुत गहरा संकेत था, क्यों?
बिल्कुल, वो शायद यही कहना चाह रही थी कि देखो मेरा ये भौतिक शरीर भले ही ना रहे पर मेरा जो असली स्वरूप है, मेरी चेतना, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी।
अनुयायियों को ये समझाने का एक तरीका था कि उनके जाने के बाद भी वो उनसे जुड़े रह सकते हैं, भौतिक उपस्थिति से परे एक रिश्ता।
निश्चित रूप से, ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये एक वास्तविकता का बोध कराने की कोशिश थी।
फिर वो अंतिम दिन आता है, भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर 1994।
जी,
पुस्तक में वर्णन है कि उस दिन तो सुबह से ही माहौल में एक अजीब सी दिव्यता थी, शांति थी।
हाँ, उनके कमरे में अलौकिक सुगंध फैलने की बात भी लिखी है, जैसे जैसे कोई दिव्य शक्तियां वहां मौजूद हों। हाँ, देव शक्तियों की उपस्थिति महसूस हो रही थी और वो स्वयं तो बिल्कुल शांत, ध्यान में लीन और आनंदित दिख रही थी। चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक आभा थी।
और फिर लगभग 11:40 बजे जब बहुत से लोग ध्यान में बैठे थे उन्हें एक सामूहिक अनुभव हुआ।
हाँ, ऐसा लगा मानो परम पूज्य गुरुदेव स्वयं देव शक्तियों और ऋषि गणों के साथ अपनी लीला संगिनी मतलब अपनी दिव्य साथी को लेने आए हों।
वाओ, ये तो उस पल की दिव्यता को दिखाता है जब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत जैसे एक हो रहे थे।
बिल्कुल, फिर ठीक 11:50 पर जैसा पुस्तक में लिखा है उनके स्थूल शरीर में हल्का सा कंपन हुआ और उन्होंने महाप्रयाण किया।
शांत भाव से अपने दिव्य लोक चली गईं, पर जो लोग वहां थे उनके लिए तो ये बहुत ही वेदना का पल रहा होगा।
निसंदेह। इसके बाद फिर लगभग 24 घंटे तक उनके अंतिम दर्शन हुए और 20 सितंबर 1994 को शांति कुंज में ही गंगा तट पर उनकी देह पंचतत्व में विलीन हो गई।
तो वो स्थूल आंखों से दिखने वाले प्रत्यक्ष दर्शन से आगे बढ़कर अब ध्यान में, अनुभव में महसूस की जाने वाली ध्यानगम्य हो गई।
सही कहा। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये अध्याय सिर्फ देह त्याग का ब्यौरा नहीं है, ये एक महाशक्ति की अपने मूल स्रोत में वापसी की तैयारी है।
हाँ, और अपने अनुयायियों के लिए उनका वो असीम वात्सल्य और उनके असली दिव्य स्वरूप की एक झलक भी इसमें मिलती है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने स्थूल उपस्थिति से सूक्ष्म मार्गदर्शन की भूमिका में एक तरह से संक्रमण किया।
हाँ, एक तरह से नेतृत्व का हस्तांतरण भी कह सकते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, व्यक्ति से चेतना की ओर।
और उनका ये आश्वासन था कि वो सूक्ष्म रूप में हमेशा साथ रहेंगी, मार्गदर्शन करती रहेंगी।
बिल्कुल। अंत में ये सोचने वाली बात है, वंदनीय माताजी ने वो जो चांद और मछलियों का उदाहरण दिया उससे भौतिक रूप से परे एक रिश्ते और उपस्थिति की बात कही।
जी,
इस तरह के जो रूपक होते हैं वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किसी के भौतिक रूप से साथ न होने पर भी जुड़ाव और संबंध की प्रकृति को कैसे समझा जा सकता है। ये हमारी उपस्थिति की जो सामान्य धारणा है उसको चुनौती देता है, राइट ना?